चतुर्जय मुदीरये नाष्टप्रयेषु भद्रेषु नित्यं भागवतो सेवयाम् भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद्भागवतम नवम स्कंद नवम अध्याय श्लोक नंबर 8। इति उक्ता सा नृपं देवां तपसा उतोषयत् शिवां कालेन अल्पियसां राजन् तस्य ईशः च आशु अतिष्ठताम्। इत्युक्ता स नृपो देवां तपसा तयोस्वच्छिताम् कालेनाल्पे असा राजं तस्य शाश्वत तुष्यत। इत्युक्ता स नृपो देवां तपसा तोषयच्छिदम् कालेनाल्पि असा राजं तस्य सशच्चातुष्यत। इत्युक्ता स नृपो देवां तपसा तेजोच्छिवां कालेनाल्पि असा राजं तस्य शाश्वतुष्यत। बोले इति उक्त्वा उह कहकार स उस नृपः राजा भगीरथ देवां शिव को तपस्या द्वारा कुतोषयत् प्रसन्न किया शिवां सर्व कल्याणकारी शिव को कालेनाम समय आने पर अल्पियसा अल्पकालीन राजन हे राजा तस्य उस भगीरथ का ईश शिवजी च निस्संदेह आशु तुरंत अतिशत तुष्ट हो गए। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसा कहने के बाद भगीरथ ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। हे राजा परीक्षित, शिव जी शीघ्र ही भगीरथ से तुष्ट हो गए। तात्पर्य, आशुतुष्ट शब्द सूचित करते हैं कि शिव जी तुरंत तुष्ट हो गए, इसलिए शिव जी का अन्य नाम आशुतोष है। भौतिकवादी लोग शिव जी को प्रति इतने अनुरक्त इसलिए रहते हैं क्योंकि वह भक्तों को सुख दुख का विचार किए बिना तुरंत ही हर एक को वर दे देते हैं। यद्यपि भौतिकवादी लोग वह जानते हैं कि भौतिक सुख एवं दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, फिर भी वह सुख की कामना करते हैं और इसे तुरंत पाने के लिए शिव जी को पूजते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे लोग सामान्यतः अनेक देवताओं की, विशेष रूप से शिव तथा माता दुर्गा की पूजा करते हैं। वह आध्यात्मिक सुख की कामना नहीं करते क्योंकि वह उनकी अज्ञात है, किंतु यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक सुख चाहता है तो उसे भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान चाहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि वासुच। सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम डरो मत। डरने का नहीं। तभी शिवजी का प्रसंग आते हैं। शिवजी वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा निम्नगणं यथा गंगा, ये जो निम्नगामी में गंगा श्रेष्ठ है, पुराण में भागवत श्रेष्ठ है, वैष्णव में शिवजी श्रेष्ठ है। यहां शिवजी को आशुतोष कहा गया है क्योंकि किसी को कुछ भी चाहिए शिवजी तुरंत तुष्टों को वरदान दे देते हैं, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। हम लोग ब्रिको का घटना जानते हैं, जिसको वर दे दिया था जिसका शरीर में हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। बोले मैं इसको परीक्षा करके देखना चाहता हूं, तो कहा ना आपका शरीर में हाथ देके देखूंगा। तो शिवजी भागते भागते विष्णु का शरण लिया, विष्णु आके अपना चातुर्य के द्वारा ब्रिकासुर को वध कर दिया। स्टोरी लंबा है, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं। जब जरासंध का जरूरी पड़ा वो भी शिवजी को प्रसन्न किया, रावण का जरूरी पड़ा वो भी शिवजी को प्रसन्न किया। हर व्यक्ति शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि शिवजी वैष्णव है। क्या बोलता है, वंशा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु बेवच पहितान पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो जो वंशा करेगा पूरा कर देगा, ये शिवजी है वैष्णव होने के नाते। तो जो हरिभक्ति चाहते हैं उसको हरिभक्ति प्रदान करते हैं, जैसे प्रचेता लोक भगवान शिवजी ने उसको विष्णु भक्ति प्रदान किए, और जो नहीं चाहते हैं उनको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन शिवजी का ये भी एक गुण है, जाकर शिवजी का आराधना आप करोगे लेकिन विष्णु आराधना नहीं करोगे, वही शिवजी आपको काट देगा। शिवजी का त्रिशूल देखे होंगे आप लोग, वो त्रिशूल से आपको ही वध कर देगा। तो विष्णु विद्वेषी को शिवजी को भी क्षमा नहीं करते हैं, और विष्णु भक्त जो होते हैं शिवजी उनको बहुत प्रसन्न रहते हैं, उसे कौन सा भक्ति दे देते, वृंदावन का भक्ति भी प्रदान कर देते हैं। ये शिवजी है। चक्रेश्वर महादेव आप लोग वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा किए हैं, वहां सनातन गोस्वामी पाद रुके थे, तो रात को मच्छर काट रहे थे। तो बोले इस जायगा में नहीं रहूंगा, यहां बहुत मच्छर काट रहे हैं। शिवजी बोला चिंता मत करो, मेदार हूं ना, आज से बाद तुम्हारा मच्छर नहीं काटेगा। तो वास्तव में वहां पर मच्छर चला गया। ये शिवजी है, इस वैष्णव का सबसे प्रिय बंधु है शिवजी। इतना प्रिय ब्रह्मांड में शायद कहीं नहीं होगा जितना शिवजी है। लेकिन इस शिव का अवज्ञा, जैसे हम लोग नाम पर पढ़ते हैं ना, तभी ये शिवजी के बारे में बहुत सारी चीज है, दो चार चीज बता रहा हूं। कतिपय विष्णु भक्त शिव को किस प्रकार पूजा करते हैं, वैष्णव रूप में पूजा करते हैं, और कोई कोई एकांतिक भक्त होते हैं वो किस भाव से पूजा करते हैं, शिवजी का अंदर विष्णु अधिष्ठान है। जीवे सम्मान करो जानी कृष्ण अधिष्ठान। शिव एक आधिकारिक देवता है, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, कि ब्रह्मा में 50 गुण है, शिवजी में 55 गुण है। और हर हरि अभेद आत्मा, भगवान शिवजी को भी डांटा नहीं, कोई पुराने मिला जो भगवान विष्णु ने शिवजी को बहुत डांटा, लेकिन भगवान ब्रह्मा को बहुत बार डांटा है, शिवजी को भी डांट नहीं पिलाया, एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसा कि शिवजी असुर लोक का पक्ष में आकर युद्ध भी किया, लेकिन फिर भी शिवजी ने कुछ भगवान ने शिवजी को कुछ नहीं किया। सुदर्शन इसमें दक्षिणा जो काशी क्या काशीराज सुदक्षिण अभिधारा को पूरे पढ़ाने के लिए ओकृत्या को तैयार किया, फिर शिवजी के फाइटिंग हुआ, पूरा काशी को जला दिया सुदर्शन चक्र, लेकिन शिवजी को जागा किधर दिया, भुवनेश्वर में। बोला देखो तुम इधर उधर भटकोगे ना तो तुम्हारा माइंड जाएगा, तुम हमारे पास ही रहा करो। ब्रह्मा को बोला क्या तुम हमारे पास रहो? बोला तुम ऐसा का मत करना, आज का बाद ऐसा बार किसी को देने का नहीं। शिवजी को प्रभु कभी झूठ नहीं बोला, बोला तुम हमारे पास रहो। इसे लिंगेश्वर महादेव रूम में शिवजी भुवनेश्वर में विराजमान है, ये भगवान का एक गुण। और क्या बोला? बोला देखो हमारा जितना सारा धाम है ना उस धाम का तुम वाचमें नहीं करो, वृंदावन बोलो, मायापुर बोलो, चाहे जगन्नाथपुरी बोलो, हर जगह में शिवजी वाचमन कर रहे हैं। बोले तुम्हारा उल्लंघन करके जो मुझे दर्शन करके आएगा वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सबसे पहले शिवजी को प्रणाम करना पड़ता है, फिर धाम में प्रविष्ट होना पड़ता है। अगर शिवजी के प्रणाम किए बिना धाम में प्रविष्ट होता है तो धामेश्वर को खुशी नहीं होता है। धाम का जो दिवास होते हैं ना, विष्णु बोलो चाहे गौरव सुंदर बोलो चाहे जो भी बोलो, वो खुश नहीं होता है। महाप्रभु जो अब संन्यास लेने के बाद नीलाचल गए, तो वहां पर उन्होंने जितना शिवजी का मंदिर है सब मंदिर में जाकर दर्शन किया। आज शिव भक्त लोग क्या कीर्तन किया? शिवो राम राम शिवो राम राम, ऐसे कीर्तन किया। चैतन्य भागवत पढ़ो मिल जाएगा। तो करोड़ों शिवलिंग है उधर पर, वहां सब शिवलिंगों जाके दर्शन किए, आ सब शिव मंदिर में जाके सबको प्रणाम किए। यहां पर वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, नामाने चैतन्य पथ बलायो वैष्णव शिवेर अमान्य करी व्यर्थतार सब। महाप्रभु का मत जैसे गौरव मत बोलते हैं ना, गौरी मत, इसको स्वीकार करते नहीं करते हैं, अपना आपको वैष्णव समझता है। नामाने चैतन्य पथ बलायो वैष्णव, महाप्रभु का मत क्या है ये जानते नहीं है, और अपने आपको बोलते हम वैष्णव है। शिवेरे अमान्य करी व्यर्थतार सब, जो शिवजी को अमान्य करता है उसका सब फालतू। समय वही केवलम, तो यहां द्वितीय पुराण का श्लोक देंगे, आप लोग सुनो। आदि बरहा पुराण में कहते हैं, जन्मांतर सहस्रेशु समाराज्य विशद्धजम वैष्णवत्तम लभेत दिमान सर्व पाप क्षय सती। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति सहस्त्र जन्म वृषभध्वज महादेव की आराधना करके सर्व पाप क्षय होने के बाद वैष्णवत्व लाभ करते हैं। अतएव श्री नृसिंह तापनी श्रुति में श्री नृसिंह एवं शिव के भक्त मध्य में बहुत पार्थक्य दृष्ट होता है। यथा अनुपनीत जिसका अभी जनई संस्कार नहीं हुआ, ऐसा 100 ब्राह्मण को सेवा करने के बजाय जिसका जो नहीं हुआ उसका उस ब्राह्मण का सेवा करना समान होता है। उसी प्रकार 100 ब्राह्मण को सेवा करने से एक गृहस्थ का सेवा करना समान है। उसी प्रकार 100 गृहस्थ का सेवा करने से एक वानप्रस्थ का सेवा करना समान है। उसी प्रकार 100 वानप्रस्थ का सेवा करने से 100 सन्यासी का सेवा कर एक सन्यासी का सेवा करना समान है। उसी प्रकार 100 सन्यासी का सेवा करने से एक जो रुद्र और रुद्रवा शिव शिव जप करता है उसका सेवा करना समान है। इसी प्रकार 100 शैव का सेवा करने से एक वेद का अंतर्गत जो आंगिरो शाखा का अध्यापक है उनका सेवा करना श्रेष्ठ है। उसी प्रकार 100 वेदवादी का सेवा करने से जो मंत्राज अध्यापक के समान है, जो निशिंग मंत्र का जाप करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब ये श्रेष्ठत्व का विचार किया गया है, इसलिए निशिंग तापोनी में जो लिखित मंत्राज शब्द दिया है वो निशिंग मंत्र को जानना चाहिए। तो ईश्वर बुद्धि से शिव का उपासना करने से अगर कोई व्यक्ति इतना सो प्रमाण वचन सुन करके चलो शिव जी को आराधना करना चाहिए, तो अगर ईश्वर बुद्धि से शिव जी का आराधना करते तो क्या होगा, भिगु सब आ जाएगा। भिगु ने क्या बोला, भिगु पत्यक्षापं ब्रह्म दंड दृढ़तयाम भव व्रत धरा जेता चेतात समनुव्रता पाषंडी नष्ट भवत्रु सच्छात्र परिपंथिना। भिगु मुनि जब शिव अनुचर नंदीश्वर का अभिशाप सुना, कहां पर सुना था, दक्ष यज्ञ, दक्ष यज्ञ हो ना, सती अपना देह त्याग किया, सती ने देह त्याग, सती को उससे पहले जब अभिशाप चल रहा था, दक्ष ने अभिशाप दिया, उसके बाद ये सब अभिशाप देना शुरू किया, तब नंदी शिव का पार्षद वो अभिशाप दिया, और अभिशाप सुनकर के दुरोधिक्रम्य जिसका अतिक्रम नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार ब्रह्म दंड रूप पति अभिशाप जो प्रदान किया था उसमें क्या है, जो लोग महादेव का व्रतधारी है और जो महादेव का भक्तों का आनुगत्य स्वीकार करेंगे वह सब सच्छात्र विहीन हो जाएगा, और वेद और वेदानुगत जितना सारे शास्त्र है वो शास्त्र से वो पाषंडी कहलाएगा। यहां भवव्रत शब्द का अर्थ है वेद भी तो भवव्रत को जानना चाहिए, क्योंकि वेद विरुद्ध शास्त्रों को जो भवव्रत करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली प्रासंगिक है, लेकिन वेद में सन्मत जो भवव्रत है उसको जो परिपालन करते हैं वो भी पाषंड मध्य गण्य होगा। सुतरां उन सब के प्रति अभिशाप प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं होता है, स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से अगर शिव जी का उपासना करने से भृगुमणि का अभिसंपात उस व्यक्ति को लगते हैं। इस प्रसंग में भृगुमणि ने क्या किया, क्योंकि उनका अभिशाप इतना बलवान के हो गया, क्योंकि भृगु ने जनार्दन को व भगवान विष्णु को वेद का मूल कारण बताया, इसे क्या बोला सर्वधर्मान परित्यजं, बताया ना प्रभुपाद जी, तो भृगुमणि ने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना। एष एव हि लोकानां शिवपंथा सनातनं च पूर्वे चानुसंतोष्टु जत् प्रमाणं जनार्दनं, अर्थात वेदों को विहित तो उपाय क्या है कि मानव मात्र एकमात्र कल्याणमय सनातन पंथा यही है, क्योंकि विष्णु का आराधना करना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्व काल में ऋषिविंद निजे निजे अभिष्ट सिद्धि हेतु वेद का अवलंबन किए थे, और श्री जनार्दन ही वेद का मूल आश्रय है। इस अन्वय मुख से अर्थात कर्तव्यता का मुख से श्री विष्णु का भक्ति का दृढ़ता प्रतिपादन करना ही भृगु का उद्देश्य था, इसलिए भृगु का साप इतना बड़ा हो गया, क्योंकि श्रीमद भागवत कहते हैं सत्त रजस्तम इति प्रकृतिर गुणास्तु युक्तिर पर पुरुष एक इहास्तु जत्ते स्थितोपादय हरि विरिंच हरेत संज्ञा श्रेयांश तत्र खलु सत्त तृणुंग निरांश। सत्तम रज स्तमी प्रकृतिर गुणा, प्रकृति का तीन गुण है सत्य रज और तम, इसमें से सपुरुष या एक धत्ता स्थितोत्पाद हरिवृंच हरेत संज्ञा, स्थिति धारण और उत्पत्ति हरि विरिंची और ब्रह्मा, हरि हरेति हरि विरिंची हरेति हरि विरिंची, हरि शिवजी, हरि शिवजी इस जगत का पालन करता है, विरिंची शिवजी ध्वंस करता है, हरे विरिंची मतलब ब्रह्मा और हरे शब्द का शंभु वो ध्वंस करता है, ते प्रकृति का तीन गुण को धारण किए तीनों देवता रहते हैं। हरिवंश पुराण में श्री शिव ही हरि के भक्ति का दृढ़ता प्रतिपादन कहते हैं हरि रेव सदा ध्येय भवद्वीर सत्य संस्थित विष्णु मंत्रा सदा विप्रिया पठद्य धायते केशव धायते केशवान, हे विप्रविंद हे ब्राह्मण सब सात्विक स्वभाव संपन्न आप सबको पक्ष में सप्तमूर्ति श्री कृष्ण का ध्यान करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। अतएव सर्वदा विष्णु मंत्र का जप किया करे, केशव का ध्यान करे। और शिव भक्ति के संबंध में जब इस प्रकार सिद्धांत तो गृहित होता है, तब तो वैष्णव तंत्र के अन्य देवता का पूजा करने का जो विधान है, वैष्णव तंत्र में अन्य देवता का पूजा करने का विधान देते हैं, वहां पर क्या समझना चाहिए? ये भगवान का बहिरंगा आवरण का सेवक होने का कारण वो सब अप्राकृत होते हैं। अथवा भगवान ने लोक संग्रह करने के लिए नरलीला का उपयोगी पार्श्वबिंदु की पूजा विहित है। जैसे भगवान ने राम रूम में रामेश्वर महादेव संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण ने शिवजी का आराधना किया द्वारकापुरी में, ये सब जो दिया गया है ये लोक संग्रह करने के लिए, क्योंकि लोग शिव का अवमानना ना किया करे। अगर हम शिवजी का आराधना नहीं करेंगे तो लोग भी नहीं करेगा, इसी लोक संग्रह शिवजी की आराधना भगवान ने इस प्रकार किया है। नरलीला का उपयोगी पार्श्वबिंदु की पूजा विहित है। तात्पर्य है कि जिस समय भगवान इस जगत में अवतीर्ण होकर के मनुष्यवत लीला करते हैं, उक्त देवताबिंद भी श्री भगवान का नरलीला का परिकर होते हैं। श्री युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ के समान श्री भगवत संतोषार्थे अनुष्ठित यज्ञादि भी अन्यान्य देव आराधना का भगवत विभूति बुद्धि से करना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ किए थे उसमें समस्त देवता का पूजा किए थे, और समस्त देवता का पूजा करने के बाद भगवान को श्री कृष्ण को पूजा किया, और युधिष्ठिर महाराज को सबको प्रणाम करना चाहिए। इसमें से जरासंध भी खड़ा है, जो जरासंध नहीं, जरासंध बध हो गया, राष्ट्र यज्ञ से पहले जरासंध बध हो गया। तो ये अन्य जो दुष्ट राजा लोग जब सब थे, सबको युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करने की इच्छा तो नहीं है, तो कैसे है अभी युधिष्ठिर महाराज का सम्मान कैसे क्या हो राजस्व यज्ञ में? तो राजस्व यज्ञ के प्रमाण ये होते हैं कि जो राजस्व यज्ञ जो करेगा समस्त राजा उनको प्रणाम करेगा, संभव कैसे होगा? तो भगवान है राजा युधिष्ठिर सर्वोपरि वही विराजित है, सर्वोपरि विराजित है। अभी कृष्ण ने अपना कला कौशल चालू कर दिया, कैसे किया? उन्होंने अपना जो सीढ़ी है वो सीढ़ी से उठना शुरू किया, आधा दूर तक जब उठा तो अपना विराट स्वरूप को देखा दिया, आधा सीढ़ी चला गया। अभी उनका रूप देख करके वहां पर जो भी कोई था ना, सबने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? कृष्ण को। अभी बाकी जो किसी को दिखाई नहीं दिया, युधिष्ठिर महाराज ने क्या समझा? सब मुझे प्रणाम किया। जैसे सबने प्रणाम किया, भगवान विष्णु अपना रूप को छिपा दिया, बाहर देखते हैं तो कृष्ण खड़ा है, तो सबको युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम हो गया कि नहीं हो गया? ये भगवान का चातुरी है, अपना भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी समस्त देवताओं को विष्णु का पार्षद हिसाब से बा आधिकारिक देवता हिसाब से पूजा किया। इसलिए प्रहलाद महाराज का आचरण का दृष्टांत देते हैं, तथा संपूज्य शिरसा भवंदे परिमेष्ठिनाम सर्व प्रजापतिम देवान प्रहलाद भगवत कला। जब नृसिंहदेव का ने हिरण्यकशिपु को वध करने का अनंतर प्रहलाद महाराज का राज्य अभिषेक हुआ, उस अभिषेक में प्रहलाद महाराज ने क्या किया? तथा संपूज्य शिरसा, अपना सिरों के द्वारा समस्त जो जो था, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र वरुण सबको परमेश्वर शब्द का ब्रह्मा शब्द आते हैं, भवंग प्रजापति दक्ष जो 12 प्रजापतियां हैं वो सबको उन्होंने प्रहलाद भगवत करा, भगवान का विभूति समझ करके प्रहलाद महाराज ने उस सबको आराधना किया। क्रतु राजेन गोविंद राजसेन पावनी जत्ते विभूति भवांस्तं संपादय न प्रभु। अर्थात हे गोविंद, निखिल यज्ञ श्रेष्ठ राजस्व यज्ञ के द्वारा तुम्हारी पवित्र कारिणी विभूति समूह के आराधना करूंगा, इसका समाधान तुम करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सब समाधान करने में समर्थ हो और तो मेरा अभिलाष पूर्ण आप ही करो। ये जो राजस्व यज्ञ कर रहे हैं इसका संपूर्ण समाधान करना आपका ही कर्तव्य है। श्री युधिष्ठिर महाराज देवतांतर का अर्चना भगवत विभूति रूप में करने का अभिलाष प्रकाश किए थे। तो स्वतंत्र रूप से भगवान का देवता लोग को आराधना नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में कहते हैं सत्यभामा श्री भगवान कृष्ण कहे थे, क्या कहे थे, सौराष्ट्र सैद्वा गणेशा वैष्णवा शक्ति पूजका मामेव प्राप्नुवन्ति वर्षाप सागरम यथा एकोऽहं पञ्चदा जात क्रिया नाम भी किल देवदत्ता यथा कश्चित् पुत्रादि जन नाम भी। पद्मपुराण कार्तिक महात्म्य सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, हे देवी वर्षा काल में बारिश अभी आ रहा है ना, वर्षा का समय में जो पानी गिरता है वो पानी कहाँ जाके मिलता है, नदी में, नदी होकर कहाँ जाता है, समुद्र में। उसी प्रकार जो लोग शिव गणेश विष्णु शक्ति सूर्य का उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करता है। जिस प्रकार जय हो अभी मत बोलो, बाद में सिद्धांत सुनो का दिमाग खराब हो जाएगा, वो सब मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार एक देवदत्त जिसे किसी को लड़का, वो बाप के लिए बेटा, बहन के लिए भाई, पोतनी के लिए पोती, किसी के लिए और भांजा भी होता है, वही लड़का अलग अलग रिलेशन में किसी के लिए बंधु भी होता है, किसी के लिए क्लासमेट होता है, तो अलग अलग संपर्कों के साथ एक ही लड़का अलग अलग भाव में सबका साथ अलग अलग संपर्क, लड़का में चेंज है क्या, जो मेरा पुत्र है वो किसी का तो पोती है, किसी का तो भांजा भी होगा और किसी को भाई भी होगा, तो एक ही लड़का अलग अलग भाव में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिलेशन में स्थापित होता है। उसी प्रकार एक ही में कृष्ण क्रिया एवं नाम भेद में पंचदारूप में प्रकटित होता हूं, जो पंच उपासना कहता है ना, वो मैं एक ही व्यक्ति हूँ, पंचम रूप में लोगों को उपासना करने का बुद्धि देता हूँ। अभी इसके आगे वस्तुतः तो सकल उपासना का मध्य में वैष्णवी श्रेष्ठ है। इस प्रकार उक्ति स्कंद पुराण में ब्रह्म नारद संवाद में कहा गया है। वहाँ एकादशी का जागरण प्रसंग में कहते हैं प्रह्लाद संगीता में वैष्णव का श्रेष्ठत्व वर्ण है, न सौरे न च शैव वा न ब्रह्म न च शक्ति न चैन्य देवता भक्तो भवेद भागवत तमोत्तम। अभी सुनो इसको फिर बोलो जय। श्री भगवत भक्त के तुल्य सूर्य उपासक नहीं होता है, शिव उपासक भी नहीं होता है, ब्रह्म उपासक भी नहीं होता है, शक्ति उपासक भी नहीं होता है, अधिक कहना ही क्या है, अपर देवगण भक्त भी वैष्णव सदृश नहीं होता है। आगे श्लोक में क्या कहा श्री कृष्ण सत्यभामा को, कहा ये सब मैं ही हूं। अब इस श्लोक में क्या कर रहे हैं, ये कोई वैष्णव का समान नहीं है, तो मतलब इसका पूजा करने का कोई हो गया ना सिद्धांत, इसलिए क्या बोलते हैं भगवान अनंत है, शास्त्र अनंत है। भगवान अनंत मतलब क्या है, भगवान बहुत सारा है क्या, भगवान तो एक ही है, भगवान का लीला अनंत है, भगवान का नाम अनंत है, भगवान का रूप अनंत है, शास्त्र अनंत है, ये सब को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए अगर एक गिलास पानी में प्यास बुझ जाता है तो समुद्र जाने का जरूरी क्या है, बराबर ना। इसलिए अगर हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ मिलता है तो ज्यादा झंझटबाजी का जरूरी क्या है, यह झंझट मत मोल लो, संभव नहीं है कि तो शास्त्रों का सिद्धांत समाधान करना सबका बुद्धि का वश में नहीं आता है। अरे शास्त्र समझ बोला, आप शास्त्र समझ, मैं नहीं समझता हूं कि जो व्यक्ति बोलता है हम शास्त्र समझ सबसे बड़ा मूर्ख है, तो शास्त्र समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन शास्त्र ही समझ जाता है कौन, जो हरि हरि इसे उच्चारण करता है वो समस्त शास्त्र समझ जाता है, उसके लिए शास्त्र समझना कोई बाकी नहीं रह गया, क्योंकि समस्त वेद उपनिषद पुराण का एकमात्र लक्ष्य क्या है, विष्णु भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, तो जो विष्णु का भजन करता है वही शास्त्र जानता है, वो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र तत्वविद है, तो शास्त्र का समन्वय इसमें होता है। तो पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में सत्यभामा के निकट जो श्री कृष्ण कहे थे जो सर्वो देववशक भगवत प्राप्ति होता है, उसका तात्पर्य वह है कि सूर्यादि विभिन्न देवगण का उपासना भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं है, क्योंकि सूर्य आदि देवगण का उपासना यदि भगवत प्रीति के उद्देश्य से होता था तब उक्त उपासना के द्वारा विशुद्ध भक्ति प्राप्ति होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। श्री विष्णु क्षेत्र में मृत्यु होने का कारण भगवत प्राप्ति होता है। कोई कोई जगह में लिखा गया है जो सूर्य उपासना करने के बाद भी उसको भगवत प्राप्ति हुआ, उसका समाधान देता हूँ सुनो। वह छोड़कर स्वतंत्र सूर्यादि देवबिंदु का उपासना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकरण में श्री कृष्ण ने सूर्य आराधक देव शर्मा और चंद्र शर्मा दोनों का चरित्र वर्णन प्रसंग में श्री सत्य भामा का कहे थे, तथा क्षेत्र प्रभावेण धर्मशीलता पुनः वैकुंठ भग्न नितो मत करो मत समीप वर्गोई जावत जीवंत दत्तभ्यां सूर्य पूजादिकं कृतं तेनाहं कर्मणा तद्भ्यां सुप्रीतो है भवं किलः। हे देवी, विष्णु क्षेत्र का प्रभाव से ही धार्मिक प्रवर देव शर्मा चंद्र शर्मा नामक सूर्य भक्त दय मेरे भक्ति प्राप्त कर मेरे पार्षदगण कौर्तिक पुनर्वार वैकुंठ धाम में आनित हुआ था। उक्त महात्मय के द्वारा जावज्जीवन जो सूर्य पूजा हुए थे उन दोनों पर परम संतुष्ट हुआ था। वह प्रसंग पद्म पुराण में वर्णित है। वहां क्षेत्रवास शब्द से मायापुर में निवास कहा जाता है, मायापुरी। श्री कृष्ण अवतार का समय में देव शर्मा चंद्र शर्मा एक सत्राजित राजा हुआ था और एक उक्र हुआ था, इसलिए सत्याजित राजा द्वारकापुरी में सूर्य उपासना करके क्या मिला था, समंतक मणि, जिसमें रोज 16.5 मन कितना हो जाएगा, नहीं 16.5 मन है, एक मन 40 किलो का होता है, 38 किलो। अभी इतना सोना रोज पैदा होता था, फुरू के गिरता था। कितना भाव होगा आज, 35,000 रुपये किलो, ये 10 ग्राम का है, 3,50,000 ग्राम, ये 3,50,000 किलो का, 1 किलो का 3,50,000 है। अभी रोज इतना सोना गिरता था द्वारकापुरी में, तो इसलिए वो सत्राजित राजा सूर्य उपासना करते थे, क्योंकि उन्होंने आगरा जन्म में कौन था, चंद्र शर्मा, और उक्कुर ने वो मुनि देव शर्मा था, और उक्कुर ने और मुनि को चुरी किया था, वो था चंद्र शर्मा। तो बोला ये सूर्य उपासना का फल नहीं है, वो सूर्य उपासना करते करते मेरा धाम में उसका मृत्यु हुआ था तो भी ये फल मिला था। अगर आप यहाँ बॉम्बे में सूर्य उपासना करोगे तो सोचोगे अगर बोलो भाई हम भी द्वारकापुरी में चंदी छत्राज या उक्कुर बन जाएगा, संभव नहीं है। वृंदावन में अगर करोगे तो हो सकता है शायद, वृंदावन कोई सूर्य उपासना करे जैसे राधारानी, अभी इसका प्रसंग हो, राधारानी सूर्य को पूजा करते हैं, रोज सूर्य पूजा करते हैं, क्यों करता है सूर्य को, राधारानी क्या बोलते हैं सूर्यदेव को, हे सूर्यदेव आप सुबह उदित हुआ है, कृपा करके हमारा साथ कृष्ण का मिलन करा दो, ये सूर्य प्रणाम है। इस प्रकार हमें क्या प्रणाम करना पड़ेगा, अगर हम भी बोले हे सूर्यदेव आप सुबह उठा है, हम पर कृपा करके कृष्ण का सदा हमारा मिलन करा दो, सबसे बड़ा गाधा वही व्यक्ति है, ऐसा अगर कहेगा तो। क्यों, क्योंकि राधा रानी को लंघन करके जो व्यक्ति कृष्ण के लिए मिलना जाता है वो पापी है, उसको मूवी दर्शन नहीं करना चाहिए। ये गौड़ी सिद्धांत कहते हैं उसको मूवी दर्शन नहीं करना, जो राधा रानी का लंघन करके जाते हैं उसको कहना ये है, हे सूर्यदेव आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, जिसके द्वारा हमें राधा कृष्ण का चरण सेवा प्राप्त हो, ये बोलना चाहिए तो भी राइट होगा, अथवा राधारानी का चरण सेवा प्राप्त हो, कृष्ण का नहीं मिलने से भी चलेगा, इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। यही तो भगवत यहां पर इसी प्रकार का सिद्धांत ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात भगवत अंतर्जामी दृष्टि से पितृ सेवा करने से भगवत संतोष होता है। अब इसका व्याख्या चैतन्य भागवत से लेंगे। गृहस्थ हिया करे पितृ मातृ सेवन जाते तुष्ट है लक्ष्मी नारायण। गृहस्थ होने के बाद अगर माँ बाप को सेवा नहीं करता है वो बदमाश है, ब्रह्मचर्य सेवा करे चाहे ना करे चलेगा, सन्यासी सेवा करे चाहे ना करे चलेगा, नहीं गृहस्थ बनने का माँ बाप का सेवा करना एकांत कर्तव्य है, तो उसमें भगवान संतोष होते हैं। तो माँ बाप का सेवा किस प्रकार करना चाहिए? श्री भगवान का अंतर्जामी दृष्टि से पितृ सेवा करने से भगवान संतोष होते हैं। ये भगवान अंतर्जामी रूप में पिता माता का अंदर निवासित तो है, इस बुद्धि से अगर माँ बाप का सेवा किया जाए तो लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होता है। अगर साधारण दृष्टि से माँ बाप को सेवा किया जाए तो भगवान प्रसन्न ना होकर के इंद्र प्रसन्न होता है, स्वर्ग सुख मिल जाएगा। साधारण लौकिक बुद्धि से अगर माँ बाप का सेवा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर अंतर्जामी दृष्टि से माँ बाप को सेवा करेंगे जहां होते तुष्ट है लक्ष्मी नारायण वैकुंठ मिलेगा, ये सिद्धांत है। तो स्वतंत्र भाव से देवता का उपासना नहीं करना चाहिए। गीता क्या कहते हैं? जेप्यो अन्य देवता भक्त जजंते श्रद्धान्विता तेह भी मामे वो कंते जजंत अविधि पूर्वकम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गया में प्रचार करने गया, भक्ति स्वरूप भागवत महाराज प्राइमरी स्कूल का टीचर है, गीता शास्त्र बहुत पढ़ा हुआ है, उन्होंने जाकर के गया में लेक्चर दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति स्वरूप भागवत महाराज वहां जाके सुन रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया गीता के ही श्लोक, जैपुण्य देवता भक्त जजंत श्रद्धानिता केहो भी मामे कंत जजंत अविध पूर्वकम। बोला जब समस्त देवता का आराधना करने का श्रद्धा पूर्व अगर अन्य देवता का भी आराधना करते केहो भी मामे कंते हो, वो मेरा ही आराधना होता है। बोला नहीं अविधि पूर्वकम। बोला आपने इसको लाइन दिया क्या अविधि पूर्वकम? ये विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वकम है। विधि पूर्वक अगर आपको आराधना करना है तो क्या करना पड़ेगा? अहम ही सर्वजिज्ञान भोक्ता च पुरी बच न तु माम विजानांति तथ्य नाष्टि जानती देवव्रता देवान पितृजानति पितृव्रता भूतेजा भूताली जानती भूतेजा जानती मज्जानी ओपी माम। आप बाकी लाइन क्यों नहीं पढ़े हो? आप इस लाइन को पढ़ के मुझे प्रश्न कर रहे हो, बाकी लाइन पढ़ के मुझे प्रश्न करो तो मजा आएगा ना। दिस इज गुरु चक्षुरु उन्मितं जेना। गुरु ने चक्षु को खोल दिया, बोले ये ऐसा ये लेके व्याख्या करो फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। भक्ति श्री भागवत महाराज बोला आज सुखदेव गोस्वामी आया इधर प्रचार करने के लिए, उन्होंने सीधा दीक्षा लिया, दीक्षा लेके गया में मठ बनाया। बोला तुम इस मठ का मठोरक्षक हो। धीरे धीरे नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ के सन्यास लिया, बाद में उनका नाम हुआ भक्ति स्वरूप भागवत महाराज, और उन्होंने गौरी मठ का गुरु भी बना। सब सिद्धांत जानना बहुत आवश्यक रहता है। जब तक मेरी उपासना ना करने से मुक्ति नहीं होता है, उसका कारण क्या है? मैं ही समस्त यज्ञ का भोक्ता हूं, कर्मफल दाता हूं, कर्मों का प्रवर्तक नियामक प्रभु हूं। यथार्थ रूप में मुझको न जानने के कारण उन देवता का उपासकगण परमार्थ पद से भ्रष्ट होते रहते हैं। ये सब शास्त्रों का कहते हैं हरि रेव सदा राज्य सर्वदेव सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रज्ञ नाभिज्ञ कदाचन। सर्वदेवगण का ईश्वर ब्रह्मा शिव को भी आराध्य श्रीहरि है, और उनको ही आराधना सबको करना चाहिए, किंतु अन्य देवता का कभी भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। गौतम तंत्र में कहते हैं गोपालं पूजेयस्तु निंदेत अन्य देवतां अस्तु तावत् परो धर्म पूर्व धर्मो अपि नश्यति। जो व्यक्ति गोपाल देव का पूजा करते हैं किंतु अन्य देवता का अवज्ञा करते हैं उसका परधर्म तो कथा ही दूर है, पूर्व आचरित तो धर्म भी भ्रष्ट हो जाता है। देखो गोपाल का आराधना करने के बाद अन्य देवता का जो अवज्ञा करता है वो जो करता वो तो फालतू है ही है, वो आगे का और पीछे का सब फालतू हो गया उसका। इसलिए किसी भी देवता का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सिद्धांत है, अपना सिद्धांत बोलने जाएगा तो दो चार दिन लग जाएगा। अब यहीं पर सिद्धांत तो समापन करता हूं, तो ज्यादा सिद्धांत तो अच्छा नहीं, जितना जान लिया उतना बहुत है, और इसके आगे अगर जानना चाहोगे तो सबको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करोगे तो सब कुछ जान पाओगे, और अध्ययन करने जाओगे तो बुद्धि घुस ढूके सिर में जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सात वस्तु को लेने के लिए सारग्रही बनना आवश्यक है। जैसे पानी और दूध अगर मिलाया जाए, हांस क्या करता है, पानी को छोड़ के खीर को पी जाता है, दूध को पी जाता है, उसी प्रकार अपना आचरण के द्वारा जब तक शुद्ध भक्त तो नहीं बन सकते हैं तब तक शास्त्र समझ नहीं सकते हैं। भागवत हो सर्वमते, अगर हमें भागवत होना है तो भागवत समझ सकते हैं। पांडित्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भागवत पर्याय कारो बुद्धि नाश होने में टाइम नहीं लगेगा। सब कुछ ज्ञान होगा, सब कुछ शास्त्र बोलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। भागवत पर्याय कारो बुद्धि नाश, तो ही शास्त्र का अगर समझना है तो क्या करना पड़ेगा, आत्मनिंदा पर प्रशंसा। हम क्या करते हैं, आत्म प्रशंसा पर निंदा, हम उल्टा करते हैं। भागवत क्या कहते हैं, भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, इस जगत में हमारा पाथवे क्या है, आत्मनिंदा करो और दूसरा का प्रशंसा करो, यही हरिभजन का सहायकारी है। कभी भी दूसरा का निंदा नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर करते रहेंगे इस गुण से भगवान प्रसन्न होकर के हमें बल प्रदान करेगा। अगर आपसे फाइट करना तो आपसे हमें ताजा ताकत होना चाहिए ना, अगर आपसे ताकत हमारा नहीं है तो आपसे फाइट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ताकतवान बनने के लिए शास्त्र का जो ज्ञान है इसको हमें आचरण करना पड़ेगा। जब तक आचरण नहीं करेंगे तब तक हम वैष्णव बन नहीं सकते हैं। यदि वैष्णव बनने के लिए वैष्णवता का आचरण करना अति आवश्यक होता है, और क्या, श्रद्धापूर्वक हरिनाम का जप। श्रद्धापूर्वक हरिनाम का जप हम करते हैं तो नामे प्रभु बा नाम प्रभु हमारा हृदय में वो चिदबल का प्रदान करेगा, नित्यानंद का आविर्भाव होगा। नित्यानंद का अगर आविर्भाव हुआ तो पाषंड पाषंड दलन बाना नित्यानंद राय, जितना हमारे अंदर पाषंड है ना, पाषंड दुर्बुद्धि है, और नित्यानंद का आविर्भाव से सब भाग जाएगा, सब जीव में समबुद्धि होगा। समयं सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते पराम, समयं सर्वभूतेषु, सब जीव में समबुद्धि होगा। तो ये करने के लिए दो चीज हमें करना पड़ेगा, क्या, आत्मनिंदा करते रहो और दूसरा का प्रशंसा करते रहो। इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, जो दुष्ट है उसको प्रशंसा मत किया करो, बोले अरे हमें साथ दुष्ट को प्रशंसा नहीं, दुष्ट को तो उपेक्षा करो। दुष्ट का संग कभी नहीं करना चाहिए, दुष्ट से दूर रहना चाहिए, ये करते रहेंगे। और हरिनाम सदा सर्वदा हरिनाम का, पापी व्यक्ति भी हरि हरि उच्चारण, इसमें ही है सिद्धांत, पापी व्यक्ति भी हरि हरि उच्चारण करके भक्त बन सकते हैं। शास्त्र मर्म तो सत्य लोग से पाताल लोग तो जितना शास्त्र है सब मेरे पास पड़ा हुआ है, सब है, जिसको जो भी चाहिए, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके पास मेरा अर्थ नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ मेरे पास नहीं है, और किस जगह में कुछ जगह में शब्द का अर्थ है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन शास्त्र समझने के लिए ये अगर आचरण करेंगे हम तो समस्त सार्थ शास्त्र जो है स्फुरन हो जाएगा। महापुरुष सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद दिया, क्या बोला, बोला जो तुम लिखने की इच्छा करो वही तुम्हारा स्फुरन होगा। अगर महापुरुष का आशीर्वाद चाहिए, महापुरुष क्यों सनातन को आशीर्वाद दिया, वैराग्य जुग भक्ति रस प्रचितनार अजधि, वैराग्य युक्त भक्ति रस का पान करा थे कौन, सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी का नाटक पाठ हो रहा है हरिदास ठाकुर का बकुल सिद्ध बकुल का सामने राय रामानंद स्वरूप दामोदर सार्वम भट्टाचार्य ओजी आदि भक्तबिंद नित्यानंद प्रभु सब बैठा हुआ है। रूप गोस्वामी पवित्र पाठ हो रहा है, विजय माधव ललित माधव नाटक सब सुनने के बाद कवित्व का बहुत प्रशंसा हुआ। बोला इसका बड़ा भाई गान और वैराग्य में इसका सम पृथ्वी में कोई नहीं है। महाप्रभु अपना भक्तों का प्रशंसा कर रहे हैं जी, इनका जो बड़ा भाई सनातन गोस्वामी है ज्ञान और वैराग्य ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो महाप्रभु का प्रसन्न करना अगर होगा तो महाप्रभु का आचरित धर्म का हमें आचरण करना पड़ेगा, तभी तो महाप्रभु प्रसन्न होंगे। और महाप्रभु प्रसन्न होगा तो क्या मिलेगा? सर्वशास्त्र पूर्ण हो गया ना, जरूरी क्या है? इसलिए महाप्रभु का प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु का अनुमित शास्त्र, महाप्रभु का शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। महाप्रभु का शास्त्र क्या है? चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत। ये दोनों पढ़ने से महाप्रभु का आचरित और प्रचारित विषय वस्तु क्या है हम समझ सकते हैं। तो रोज कम से कम जब वृंदावन में सड़क गोस्वामी विराजित थे रोज एक पहर में चैतन्य चरित कथा का आलोचना करते थे वो लोग। हमें क्या, हम तो एक पहर तो कर नहीं पाएंगे, हमें कम से कम रोज एक घंटा शिशी पढ़ना अति आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु कथा, चैतन्य चरित चैतन्य भागवत रोज एक घंटा पाठ करना अति आवश्यक है। आज जब हम एक कथा को पाठ करेंगे तो ऑटोमेटिकली भागवत हम समझ पाएंगे, नहीं तो संभव पर नहीं है। भागवत दुरोह है, भागवत में कृष्ण कथा परिपूर्ण है। कृष्ण कथा अपराध का विचार करता है, गौर कथा अपराध का विचार नहीं करता है। ये भागवत में और गौर कथा में अंतर है, समझ गए? ये भागवत है गौर कथा अंतर। चलो हरे कृष्ण, नौ बज गया। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी की जय, श्रीमद भागवत मंत्र की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।